अगले सबक से पहले पिछले सबक के चंद सवाल। ये कहती हैं कि कल का सबक सूरह नूर में से था, बेशक इस्लाम ने पहले जिना के तमाम रास्ते बंद करके फिर जिना पर यह हदूद लगाई। इस गुना से जो माशरती खराबियां पैदा होती हैं, इनका असर आने वाली नस्लों पर पड़ता है। ये सजा बेशक दूसरों को इबरत देने के लिए सही है। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस गुना के इर्तकाब से जो बच्चे यानी मुसलमानों के बच्चे, मुराद इनकी यह है कि लड़के मुसलमान थे, दुनिया में आते हैं, वो माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर माँ बच्चे माँ के साथ रहते हैं तो वो भी माँ ही की तरह से यानी जिंदगी गुजारते हैं और माशरे में मजीद गंदगी फैलती है। या अगर इनको कोई घराना अपनी सरपरस्ती में ले लेता है तो इस इकदाम में खानदान और दूसरे दोस्त अहबाब इतना डराते हैं कि ऐसा काम करने में बहुत मुश्किल आएंगी। फिर इन मुश्किल में यही लोग बार बार इन बच्चों के सामने तस्करा करके इन बच्चों में एहसास कमतरी और आता है और गुस्सा आ जाता है, जिसका निशाना घर वाले बनते हैं। अब इन बच्चों का क्या कसूर? बस उलमा ने तो ये फतवा दिया है कि ये इमामत नहीं कर सकते, इसका मुझे नहीं पता। इन बच्चों के लिए क्या किया जाए माशरे में कि इनको इज्जत मिले? देखिए, ये सवाल बड़ा अहम है। हो सकता है आज से 10-15 साल पहले अगर पूछा जाता तो ये सवाल इतना काबिले गौर नहीं था, लेकिन आज के दौर में ये बात आम है। घरानों में ऐसे मसाइल हैं, शादी से पहले मर्दों के किसी के साथ ताल्लुक के बुनियाद पर जो बच्चे वजूद में आ जाते हैं, फिर बात आती है या शादी होती है तो वह बात अपनी भी करते हैं कि इस बच्चे को अपने साथ रखा जाए या सो ऑन। इस तरह के केसेस कई सामने आते हैं। इस्लाम क्या कहता है? हदीस में आता है कि जानी का है, एक रिवायत में आता है कि बच्चा उसके उसका है जिसके बिस्तर पे पैदा होता है। ये दो तीन चीजों को जमा करके अगर हम देखें तो खुलासा क्या है कि बच्चा माँ का होता है। इवन अगर लियान का सूरत है जो कि हमने अभी आखिरी आयतों में देखा था, तो उसमें भी है कि बाद में बच्चा भी चल का हो लेकिन बाद नहीं मिलेगा। लियान के अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है और उसकी मुमासलत माँ पे ही हो, यानी मीन के वो मर जाता था, भी बच्चा बाप को नहीं मिलता। इस्लाम का इसमें ये तर्ज अमल क्यों है? आप देखिए कि आपका ये सवाल बिल्कुल बजा है क्योंकि आप आज को सामने रहे, लेकिन अगर आप रियलिटी में पूछे हल के में इसका हल ये है कि अगर खुदा न खादा के यार इतना बिगड़ चुका है कि शादी से पहले ही उसकी औरत रुका दे, या अगर उस बच्चे को समझ आए, सबसे पहले खुद तौबा, उस औरत को भी तौबा करवाएं, और उस तौबा के बाद फिर अगर तो इस्लाम नाफिज है, इस्लाम की सजा लगती है, नहीं तो फिर उनकी आपस में शादी करा दें। हजरत उमर के बारे में आता है कि उनके पास जिना का एक केस लाया गया, दोनों अनमेरिड थे, उन्होंने जिना किया, आपने दोनों को 100-100 कोड़े लगाए और उसके बाद निकाह करवा दिया। सबसे बेहतरीन हल इसका यह है कि अपनी नस्लों को गैर मुस्लिम औरतों के साथ ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमको भी नॉन मुस्लिम बना देंगे। बहुत सारे हकूक तो मुल्कों में मिलते हैं कि जी एक हफ्ता आपके पास, एक हफ्ता उनके पास, तो दिस एंड दैट, और भी चूचू का मुरब्बा होता है। और इस हमारे दावत ना देने आप नाम में और इस सूरत के कि नाम है नूर, रोशनी, लाइटनिंग, और टॉपिक के इस जिना और जिना के मुहरकात और सदे बाब बात है कि जितना हम इस किताब की रोशनी को आम करेंगे ये बुराइयां खत्म होंगी। आखिर वो कौन से जज्बे थे कि सहाबा के दौर में लोग गुनाह कर भी लेते थे बिलफर्ज अगर ये, तो सीधा घर नहीं जाते थे, अल्लाह के नबी के पास आते थे। आखिरत की जवाबदेही का एहसास है। तो वो औरतें जिनसे इतनी कुर्बत हो जाए जज्बात के नाम पर, क्या एक मुसलमान होने के नाते उनको इस्लाम की दावत नहीं दी जा सकती? मेरी नजर में बेहतरीन हल यही है कि ऐसी औरतों को मांग किया जाए और फिर उसी से शादी कर दी जाए। बाकी कहते हैं वो अलग होते हैं। जी आपका सवाल।
जी मेरा ये सवाल था कि अक्सर देखने में आया कि मुस्लिम बच्चों के नॉन मुस्लिम लड़कियों से ताल्लुकात कई कई साल हो जाते हैं, तो ना माए तो बच्चे उनको मुसलमान
फिर आपकी गलती आपके बच्चे भुगतेंगे? सूर नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दी, वो उसमें से भी अच्छे होंगे। यानी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कैसे हालात की थपेड़ों से निकलने वाले बच्चे फिर उनके अंदर एग्रेसिवनेस आती है और फिर वो उस गंदे माहौल से तौबा कर कर इस्लाम में आ जाते हैं। तो अल्लाह ने हर केस दुनिया में रखा है ना, वो हमारी इबरत, हम सब उसमें अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं। कभी अगर ऐसा कोई मामला किसी का हो गया तो उसका पैचअप करने का बेहतरीन तरीका ही ये है कि अब उसी के साथ उसकी जिंदगी को बचाया जाए। और कम की उस औरत से अगर बिलफर्ज वो बहुत तजर्बे नहीं उतरती, या आपने सोचा हुआ था आप पाकिस्तानी माहौल में शादी करेंगे, आपने ये सोचा वो सोचा, तो दूसरी कर लीजिएगा बच्चे की। एक शादी करके उसके गुनाह को जायज तो करार देना। तो बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों में ना डाले, लेकिन कानून यही है। जी
आज की लाइफ में भी हम देख, आखिरी आयात में भी ये बात है, तैयब लोगों के लिए तैयब बात है, तो फिर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन आ
देखिए
रही है
शैतान, इनका सवाल ये कि हलाल बिन उमैया जो इतने अच्छे सहाबी थे तो उनकी बीवी से ये गुनाह क्यों हुआ? याद रखिए कि वमा उबर्रियु नफ्सी बिस्सूए इल्ला मा रहम रब्बी। आज के सबक में बार बार आप पढ़ेंगे कि अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती, अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती, सबको भूल के अपने ऊपर ले ले, अगर मेरे ऊपर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो मैं कभी इस गुनाह से ना बचती। हर एक खुद से के शैतान लगा हुआ है, नफ्स लगा हुआ है, बहक जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए वो कितने खूबसूरत लोग थे कि इन गुनाहों के बाद फिर हदूद लगवाते थे अपने ऊपर। तो इंसान भटक सकता है, अच्छे से अच्छे इंसान से भी बुरे से बुरा काम हो सकता है, जिस तरह कभी कभी बुरे से बुरा शख्स भी शौक में कोई अच्छा काम कर देता है। तो इससे हम सहाबा या सहाबियात के बारे में कोई गलत गुमान नहीं रखेंगे, वो इंसान थे और अल्लाह ताला ने उन्हीं से तो मिसालें जमा करके हमारे लिए रखी थी ना। ठीक है, आदत नहीं होती उनकी, ये कह लें कि पाँव फिसलता है लेकिन आदतन वो करप्ट लोग नहीं होते। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज के सबक से भी इंशाल्लाह हमें काफ़ी चीज़ें नजर आएंगी, उसी मजमून का अब आगे एक और रुख हम देखेंगे। तो सबक पे चलते हैं। तफसीर से पहले थोड़ा सा सबक का सिनेरियो। तफसीर सॉरी सूरत के आगाज में आपको बताया गया था कि मुनाफिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमानों को जोरे बाजू से नहीं हरा सकते, बदर से लेकर खंदक तक हर जंग में मुसलमानों को फतह ही फतह होती थी, इस मुनाफिकों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ग्रज था वो और बढ़ा। वो फितनों की तलाश में थे। सन 5 हिजरी में वो जैनब रजी अल्लाह अनहा से आपके निकाह की वजह के ऊपर एक इल्जाम लगा चुके थे, जिसकी वजह से मुआशरत बड़ा एक तूफान बरपा हुआ। अब को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं गुजरा था के गजवा बनू मुस्तलक, मुस्तलक दो नाम है, इस जब आप सीरत पढ़ते हैं तो दोनों नाम सामने आ सकते हैं। गजवा बनू मुस्तलक भी कहते हैं, तो ऐसे आता है जैसे तलाक है ना, इस तरह तलाक ये कबीले का नाम था। ठीक है, क्योंकि ये मुसलमानों का गजवा जो था बनू मुस्तलक के लोगों से हुआ था। इसी तरह इस दूसरा नाम है गजवा मरसी, मुरसी सीन या आइन, आइन है। तो मुरैसी नाम का कुआं था, दोनों एक ही कस्बे के नाम। तो मुसलमान वहां जाने की तैयारियों में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे आदमियों को साथ ले जाने के लिए कुर्रा किया डाला, और कुर्रा उस वक्त डालना बिल्कुल जायज है जबकि उस पर शर्त ना हो। यानी गैम्बलिंग या जुए में और कुर्रे में शर्त लॉटरी में क्या फर्क है कि कुर्रा जब जायज चीजों में एक कुछ करना हो। आप एक दूसरे का दिल बुरा होता है, दूसरे को कहते हैं तो एक का दिल बुरा होता है तो फिर आप कर लेना या कुरान, और इधर भी मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने कुरा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर कुरा जो था डाला। सन 6 हिजरी का ये मौका था। हजरत आयशा आपके साथ इस सफर में चली, गजबे से उसी का सफर था। अब हो गया सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया, वापिस आ रहे थे तो हजरत आयशा एक तोहमत लगी जिसका जिक्र आज के सबक में, वो मैं आपको आयतें शुरू करने के साथ बताऊंगी। दूसरी चीज आज के सबक में हम देखेंगे तशील फाहिशा क्या होती है। नशर इशात का लफ्ज आपने बहुत दफा सुना होगा, आज की नशरियात में ये है और करेंगे इसकी तशहीर है। इसको इस्लाम तशी कहता है, देना फैलाना, पब्लिसिटी मीडिया में कॉमन करना। तो बेहद आम करने में लोगों की क्या कोशिशें हैं, इस्लाम के ऊपर आज इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। बहुत कि आज के सबक का यही है कि आज हम कैसे बेहो पहचाने और उसको खत्म कर सके। चीज जो आज के सबक में है हमारे पास से वो इखलाकी तरफ। गो के वाकया बहुत ही तकलीफ दे था, अल्लाह के नबी के घराने पे भरास इसकी चोट पड़ी, लेकिन इतनी बड़ी आजमाइश नबी और उनकी बीवी को डालकर अल्लाह ने माशरे की तत्हीर यानी उसकी पाकी की क्लीनलीनेस का इख्तमाम किया। बहुत ही खूबसूरत मरल्स हैं माशरती जिंदगी के, जिसमें इस नई बात को आगे ना करना कि इंसान के बारे में कोई बुरी बात अगर कान में पड़े तो ये सोच लेना कि क्या वो ये काम कर सकता है, क्या मुझे उससे मुझे इस चीज की मुझे उससे उम्मीद है, और बेसबूत बातों को आगे से आगे करना ये अल्लाह की नजरों में कितना बुरा है इसको हम देखेंगे। फिर इसी तरह शैतान के कदमों की पैरवी से क्या मुराद है, और फुखश और मुनकर का शैतान किस तरह हुक्म देता है। फिर एक बहुत ही खूबसूरत अदब जो आज के सबक से हम सीखेंगे, दुश्मनों पे इंसान का रहम करना। वो लोग जो आपको तकलीफ दें, सताएं, परेशान करें, आप उनको पहले से भी ज्यादा देने लग जाएं। ये अबू बकर के और मिस्ता के वाक्य से हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर इसके बाद आखिर में हम देखेंगे कि जोड़े कैसे बनते हैं, कैसे लोग कैसी बातें करते हैं और कैसे मर्दों को कैसी बीवियां। बहुत ही अहम सबक है, आप ये कह सकते हैं कि पूरी सूरत के अंदर से एक बुनियादी टॉपिक आज के समय में। कोशिश करेंगे कि वाकया चूंकि इसमें एक आना है तो जहां तक आयात एक मफहूम के साथ चलती है उसको लेकर फिर जो बातें रह जाएंगी उसको साथ साथ हम देखते जाएंगे। तो फरमा आयत नंबर 11-11, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना नस्वतुम मिनकुम, जो लोग ये बहतान घड़ लाए हैं ये तुम ही में से तो एक गिरोह है। यहां लफ्ज देखिएगा इफ्क, इफ्क कहते हैं किसी बात को असल से फेर दे। बुहतान से अगला मरहला होता है कि आपने बैठकर किसी पे एक बात कर दी, और लफ्ज बुहतान भी अरबी का लफ्ज है। अबू ही तल्लजी कफर कहां पड़ा है, तीस बारे में नमरूद के किस्से में हजरत इब्राहिम के लिख कर वो हैरान तो रह गया था लेकिन उसके बावजूद उसने हिदायत को कबूल नहीं किया।
इस ब्रेक के लिए वाइबर पिक कर रहे हैं
जी, जो मर्जी कर ले मैंने देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या होता है कि ऐसी बात जिसको सुनकर अगला हैरान रह जाए, बुहिता का मानी हैरान रहना होता है। तो पहला दर्जा कहता है बोहतान। अब मिसाल है कि आपने किसी के ऊपर एक बात की जो उसने नहीं की हुई, ये बोहतान हो गया। इस बात को फिर लेकर आप में से एक दूसरे पे असल से बाल से बदल कर दूसरे तक कह दें तो इसको इफ कहते हैं। उर्दू में इसको हम कहेंगे बात पलट लेना, जैसे इधर से बात उधर ट्विस्ट कर देना। बाज दफा लोग बात को पलट कर ट्विस्ट करते हैं, बदल भी आप कर सकते हैं कि यहां से एक बात किसी के कान में कहिए और वो दूसरे के कहे, तीसरे के कहे, तो आखिर तक जाने तक पूछेंगे तो वो बात का क्या की क्या बन चुकी होगी। और इफ का मानी तूफान भी होता है, तो बातों का तूफान इशारा है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर लगने वाले इल्जामात की तरफ। उसमा का जो लफ्ज है, उसमा जमात को कहते हैं, गिरोह को कहते हैं, यानी एक बड़ी जमात और मजबूत के मानों में आता है गिरोह। ये जो हमारे आसाब होते हैं ना, वो भी इसी से आसाब मसल्स, क्योंकि ये हमारे जिस्म पर गोश्त और हड्डियों को यूं बांध देते हैं। हमारा गोश्त अलग हो जाए हड्डियों से अगर बीच में ये मसल्स या नर्व्स ना हो, ठीक है। और अपने ही गिरोह के लोगों को सही कहना, उसमें भी एक बांधने का मानी आता है। इस तरह जो पट्टी बांधी जाती है जख्मों पर उसको भी असबई कहते हैं, क्योंकि ये भी जख्म को बांध देती है। बहरहाल अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि आपकी बीवी पर जो इल्जाम लगाया गया तो ये गैरों ने नहीं लगाया, ये आप ही के अंदर का एक गिरोह है। और याद रखिए, घर का धोबी लंका डुबोए वाली जो कहावत है वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। गैरों से आपको उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितना आपको अपने करीबियों से तकलीफ पहुंचती है। लेकिन तसल्लियां देखिए, ला तहसबूहु शर्रल लकुम, आप इसको अपने हक में बुरा ना समझे। इतनी बड़ी बात और आपको कहा जा रहा है कि इसको बुरा ना समझे। बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए खैर ही का वाक्य है, वो तो खैर है आपके लिए। क्यों भाई, इतनी बड़ी बात है, तो बुरा क्यों ना समझो। पहली बात देखिए, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके कि आसान तखरबु शयन वहुवा खैरुल लकुम और अंतखी तो एक बुश है बहुत शरुल लकुम। अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत है कि हमारी जिंदगी में ऐसे हालात ले आता है बाज़ औक़ात कि जो बज़ाहर हमें बुरे लगते हैं हम अनवांटेडली उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बता देता है कि वो हमारे हक में बहुत बेहतर है। ये जिंदगी का असूल बनाइए। जो बात आज आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाला, ये आपके हक में बेहतर है। ये आज से 10 साल बाद आपको पता लग सकता है, 5 साल बाद पता लग सकता है। इंसानी मामलात में हम दिन रात इस आजमाइश से गुजरते हैं कि अल्लाह ताला के फैसलों को दिल की खुशी से कबूल करो। बस आप कहते शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला पता नहीं आपसे क्या और लेना चाहता है। आप चाहते हैं बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा, ये तो तब पता लगेगा जब एक हो गया तो फिर आप किसी ना काम के रहेंगे। इसी तरह आप देखिए शादी सोचते हैं कहीं और हो जाए, वहां नहीं होती कहीं और हो जाती है, बड़ा दुख होता है, बाद में पता चलता है कितनी बड़ी खैर थी, अल्लाह ने मंगनी तुड़वा दी इसमें कितनी बड़ी खैर थी, अल्लाह ने किसी शादी होके तलाक दिलवाने से बचा लिया। तो अकलमंद इंसान वो है जो हर चीज को खैर समझे। यहाँ इस वाक्य में शर्रुन शर्रुल लकुम क्यों ना समझो, क्या खैर थी इस वाक्य में, सब साफ़ जाहिर हो गए। अगर ये वाकया ना होता तो आम लोगों को कभी अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के बारे में पता ही ना चलता। अंदर छुपे रहते हैं वो लोग जिनके दिल में आपके बारे में बहस होता है, अपनों में होते हैं, आपके सामने हंसते मुस्कुराते स्माइल पास करते देते लेते भी हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी हसद की आग होती है कि मौके पे वो फिर फूट पड़ते हैं। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा ही हुआ। दूसरी बात खैर इसलिए भी थी कि सब्र का मौका मिला। क्या हुआ, तकलीफ तो आती है, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन का सब्र कर लेंगे तो खैर मिलेगी। तीसरी बात ये कि रिजल्ट बड़ा अच्छा निकला। किस सूरत में निकला, ये आज के सबक की जो पूरी आयत है ना, आयत नंबर 11 से 26 तक, ये सारी उस मौके पे नाजिल हुई। हजरत आयशा फरमाती कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरे हक में कुरान पाक की आयतें नाजिल होंगी। फिर एक और इससे फायदा क्या होगा कि लोगों के लिए नसीहत बन गया ये वाक्य। एक वाक्य की बुनियाद पर इतनी खूबसूरत तरबियत हुई, ये भी एक अगला नुकता नोट कर लें, कि मोमिनों की तरबियत का मौका मिला। इतनी खूबसूरत तरबियत हुई कि निखर गए, पॉलिश हो गए, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले कि सहाबा भी इंसान थे, उनके अंदर भी शैतान आ जाता था। तो ऐसे वाक्यात की बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत अखलाकी अहकाम दिए कि जिससे मोमिनों की तरबियत का मौका मिला। फिर इसी तरह से प्रोपेगंडे से बचने का तरीका सिखा दिया अल्लाह ताला ने इस आयत में। और एक और बात भी इस वाक्य के जरिए से हमें पता चली है, वो क्या है कि झूठे प्रोपेगंडे अहले हक को कभी नुकसान नहीं देते। सारा दिन कोई चांद सूरज की तरह मुंह करके उसको बुरा बुरा कहता रहे, एंड ऑफ द डे सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे कभी कभी सूरज के ऊपर बादल आ जाता है ना, लेकिन जरा सा बादल हटता है तो फिर छमछम करती हुई सूरज की किरणें सामने आती हैं। इसी तरह अच्छे से अच्छे लोगों पर भी बाज दफा इल्जाम भी लगते हैं, गलत फहमियां भी पैदा हो जाती हैं, लोग उनके बारे में गलत सोचने भी लगते हैं। अगर वो ठीक हैं, अगर वो अच्छे हैं, तो याद रखिए कि अल्लाह की जात उनको जरूर उससे बचा लेगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसी तरह कभी की बातें सामने आ गई। तो लिहाजा इंसान जिंदगी में आने वाले ऐसे वाकयात को अपने ऊपर लेकर हमेशा अच्छा गुमान करे, अपने नर्व्स को शट डाउन ना करे, ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसका ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। हम ऐसी बातों के मौके पर अमूमन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बस नहीं करना क्या ऐसे वक्तों पे, तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक, अच्छे दिनों का इंतजार और दोस्त दुश्मन की पहचान,
اور خاص طور پہ اس میں جو حضرت عائشہ کا کردار دیکھیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے تو ایک دیندار کا کردار ہے. الزام بہت ساروں پہ دنیا میں لگتے ہیں، سکینڈل سیاستدانوں کے بھی بنتے ہیں اور اسی طرح سے آرٹسٹوں کے بھی بنتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن الزام لگ رہا ہوتا ہے، اگلے ہی سال اسی کو لوگ پھر ووٹ دے کے آگے لے آتے ہیں، اتنا فرق نہیں پڑتا. سب سے برا پروپیگنڈا دیندار کے نام پر پروپیگنڈا ہے. شیطان کو کبھی بھی نہیں اچھے لگتے دین کا کام کرنے والے. کبھی آپ نے کبھی سوچا، سب کو چھوڑ کر لوگ مولویوں اور دینداروں اور وہ چند لوگ جو دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں انہی کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ان کی تو اتنی سی بھی بات اتنی بڑی دکھے گی، اور اپنے بڑے بڑے کام انسان کو بہت چھوٹے چھوٹے کیوں دکھتے ہیں؟ صرف شیطان چاہتا کہ ان کو بدنام کرو، ان سے جان چھڑاؤ اور ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ. یہ سارے پروپیگنڈوں سے بچ کر جب ایک انسان اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے نا، وہ کام کا بن جاتا ہے. صحابہ کرام پر اللہ کے نبی کو جو اندھا اعتماد تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے مشکل مرحلوں میں صحابہ جمے رہے. اللہ کے نبی کی بیوی پر جب الزام لگا، تو ایسے وقتوں میں تو بہت سارے لوگ بہت کچھ باتیں کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر سے خیر ہی خیر نکال دی. اب یہ واقعہ کیا تھا؟ احادیث میں اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی زبان سے، کہ وہ کس طرح سے اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور اپنی کہانی خود سناتی ہیں. کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کیا تھا کہ آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ عمل کی باتیں نوٹ کرتے جائیں کہ اس طرح کا قرعہ ڈالنا جائز ہے، کہ کون آپ کی بیویوں سے میں سے آپ کے ساتھ ہے. غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا، یعنی سٹاپ اوور لیا، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی. یاد رکھیے کہ اس دور میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے سفر میں، یا عام طور پہ خزر میں بھی عورتیں دن میں نہیں جاتی تھی، پردے کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے. خیر، یہ کہتی ہے میں چلی گئی. جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر پڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جولری پہنتی تھی صحابیات بھی، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ ان کا اپنا نہیں تھا، اپنی بہن کا ہار لے کر گئی تھی. تو گویا کہ اس کی بھی ایک رخصت آپ کو مل گئی. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے حوض سے، حوض کہتے ہیں وہ سواری کے اوپر رکھے جانے والا ایک چھوٹا سا، چھوٹی سی ایک سیٹ ہوتی ہے جس کے چاروں طرف پردے لگے ہوتے ہیں، ڈولی کہہ لیں، حوضج بھی کہتے ہیں، حوض بھی کہتے ہیں. کہتی ہیں طریقہ کیا تھا کہ جب لوگوں نے کوچ کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے حوض میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی سے اٹھا کر اونٹ پر رکھ لیتے تھے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی. میرا حوضہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. اتنی دبلی پتلی، اور کتنی عمر تھی؟ 13-14 سال ہوگی اس وقت ان کی عمر. تو دبلی پتلی چھوٹی عمر کی بچی تھی، انہوں نے بغیر اس کے حوضج کو اٹھایا اور لے کے چلی گئی. میں بے خبری میں خالی حوضہ اونٹ پر سوری وہ بے خبری میں خالی حوضہ اونٹ پر رکھ کر سوار ہو رخصت ہو گئے. جب میں ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی. یہ دیکھیے کتنا عقل مندی کا فیصلہ ہے. بعض دفعہ کہیں سفر میں، خاص طور پہ حج اور عمرے میں، جب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں نا، وہ اس کو ڈھونڈ رہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے، ایک آنکھ مجھے لی، آپ ادھر تھے، میں ادھر تھی، میں ادھر تھی. بیسٹ طریقہ جہاں آخری وقت کسی کو چھوڑا تھا یا کمٹ کیا تھا کہ یہاں ملا کریں گے، وہاں چپ کر کے بیٹھ کے دعائیں پڑھنی شروع کر دی. یہ بہت عقل مندی کا فیصلہ تھا ان کا، کیونکہ اگر یہ رہتی مجھ کے یہ لیٹ گئی کہ چلو، دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. تو عمل کی بات ہے، کبھی الگ ہوں. اور بچوں کو بھی یہ نصیحت کیا کریں کہ کہیں ہاتھ الگ ہوا تو وہیں کھڑے ہو جائیں جہاں آخری دفعہ ماں کو دکھے تھے، ماں وہیں پہنچ جائے گی. اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی. نیند کس کو آتی ہے ایسے حالات میں؟ جو اللہ پہ اپنے معاملے ڈال دے، اپنے اوپر لے. ذرا قافلہ چلا گیا، آپ اکیلی ہیں، رات کا وقت ہو رہا ہے اور کوئی ہے نہیں، تو آپ تو رو رو کے پتہ نہیں کیا سم، آسمان طوفان سر پہ اٹھا دیتی ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، شوگر ڈاؤن ہو جاتی اور سر میں درد شروع ہو جاتی. जो होता है होने दे। देखिए अपने आप को बिल्कुल बोनलेस बना ले, जिधर मोड़े मुड़ता जाए। इंसान की औकात इतनी है, मेरी तो इतनी है, मेरा रब मुझे जो कहेगा मैंने वही करते जाना। बस रास्ते में अटकले, रुकावटें, परेशानियां, तकलीफें आए, बस सबर कर ले कि अल्लाह ताला तूने मुझे सबर का मौका दिया। तो हजरत आयशा सो गई, दिल साफ था, सो गई। सुबह हुई, अब रात भर कोई मामला नहीं हुआ। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सुबह के वक्त सफवान बिन मुअत्तल सलमा इस जगह से गुजरे जहां मैं सो रही थी, और मुझे देखते ही पहचान गए, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे बारहा देख चुके थे। यहां से क्या पता चला कि अज़वाजे मुतहरात और सहाबियात चेहरे का पर्दा करती थी। लोग कहते हैं किधर दलीला जी, बुखारी की रिवायतों में से रिवायत है, तो लोग इसका इनकार नहीं कर सकते। क्यों? और पर्दे के आयते कब नाजिल हुई? 5 हिजरी में। अभी वाकया 6 हिजरी का, तो 1 साल हो गया था इनको निकाब करते हुए। कहती है पर्दे की आयतों से पहले मुझे ये चूके देख चुके थे। अब मुंह पे कपड़ा रख के सो रही है, साहबी पास से गुजरते हैं और वो कहती है कि ये बदरी साहबियों में से थे। और आप कहते हैं बदरी साहबा के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि आज के बाद तुम कुछ भी करो मैंने तुम्हें माफ कर दी। आला मुकाम है, बदरी साहबा के बारे में जन्नत की खुशखबरी है। इनको सुबह देर तक सोने की आदत थी। अब ये सुबह देर तक सोने की आदत क्यों थी और क्या हालात थे, ये उनकी एक जाती बात है। और रिवायत में यहां तक आता है कि अल्लाह के नबी ने इनको ये जिम्मेदारी दी हुई थी कि किसी भी वो जगह काफिला जब चला जाता है तो आप उसके बाद सबसे आखिर में आए, ताकि गिरी पड़ी चीजों को उठा ले। कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है ना, बच्चे की चीज रह गई, बड़े की रह गई, दिस एंड दैट रह गई। तो कहती है कि इस तरह से ये उठकर देर से जब आए तो इन्होंने मुझे देखा, तो मुझे देखकर इन्होंने क्या कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको पता था कि लश्करगाह में जो भी कोई चीज है, ऐसी चीज पड़ी है, उसको मैंने अब उठाना है। तो ये कहती हैं कि जब वो मेरे पास आए साहबी और उन्होंने किसी शख्स को सोते देखा, इतना भी नहीं पता कि कौन है, मर्द है कि औरत, सोते देखा तो इन्ना लिल्ला पड़ा। और उनकी इन्ना लिल्ला से जब मैं उठी तो मेरा मुंह देख के कहते हैं अरे रसूल की बीवी यही रह गई, ये जुमला बोला। इसके अलावा कहती है कोई बात हमारी आपस में नहीं हुई। इनकी आवाज से मेरी जब आंख खुली, मैंने फौरन उठकर फौरन अपने मुंह पर चादर डाल ली। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, लाकर अपना ऊंट मेरे पास बिठा दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। अलग क्यों हटके खड़े हुए? क्योंकि ऊंट पे सवार होना कोई आसान नहीं होता, पर्दा खुलने का डर होता है, जिसम नजर आता है। तो वो शराफत की वजह से साइड पे हो गए और ये ऊंट पे सवार होने लगी। मैं ऊंट पर सवार हो गई और वो नकेल पकड़ कर रवाना हो गए। दोपहर के करीब हमने लश्कर को जा लिया, यानी फजर के बाद निकले, जोहर से पहले वहां पहुंच गए। जबकि वो अभी एक जगह जाकर ठहरा ही था और लश्कर वालों को भी पता भी ना था कि मैं पीछे छूट गई हूँ। पता कब चलना था? जब वहां जाके उतरते, हौदज खोलते, खाली था। और वहां रास्ते में कोई इंटरटेनमेंट तो थी नहीं कि आप क्या खाएंगी और आप क्या पिएंगी। सीधे साधे सफर होते थे, सीधे साधे लोग होते हैं, किसी को भी पता भी नहीं कि आयशा पीछे से आई है या साथ आई है। लेकिन कहती है कि इस पर बुख्तान उठाने वालों ने बुख्तान उठा दिए, और इनमें सबसे पेश पेश अब्दुल्ला बिन उबई था, मगर मैं इससे बेखबर थी कि मुझ पर क्या बातें हो रही हैं। कुछ नहीं पता था। इसने सिर्फ उनको हजरत सुफान के साथ आते देखा है। और इतने गंदे इसके अल्फाज जहां तक आता है, एक रिवायत में आता है कि जब सुफान के ऊंट पर हजरत आयशा लश्करगाह में पहुंची और मालूम हुआ कि आप इस तरह पीछे छूट गई थी, इसी वक्त अब्दुल्ला बिन उबई पुकार उठा कि खुदा की कसम ये बचकर नहीं आई। लो देख लो, तुम्हारे नबी की बीवी ने रात एक और शख्स के साथ गुजारी और अब वो इसे ऐलानिया लिए चला आ रहा है। ये आपको सवाल का जवाब मिला, दौर नबी का है, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, इंसान तो इंसान ही है ना। खैर, कहती है मदीने पहुंचकर मैं बीमार हो गई और 1 महीने के करीब पलंग पर पड़ी रही। शहर में इस बुख्तान की खबरें उड़ रही थी, रसूलुल्लाह के कानों तक भी बात पहुंच चुकी थी, मगर मुझे कुछ पता ना था। भोली भाली थी, ना बाहर किसी से मिली, ना गई, ना कोई आया। और डिसिप्लिन देखिए मदीना का, आज तो अल्लाह रहम करे व्हाट्सएप और वाइबर और ईमेलों में जो है और फेसबुक पे जो खबरें लग जानी थी, कुछ भी नहीं पता इनको। कहती बस एक बात मुझे खटकती थी, और वो क्या, जब मैं बीमार हुआ करती थी तो अल्लाह के नबी की जो तवज्जो मेरे साथ होती थी वो नहीं है। दिल में जब बाल आता है ना तो जरूर चेंज आती है। अच्छे अच्छे ताल्लुकात भी क्यों ना, इंसान का दिल खट्टा हो जाता है। कहती अब घर में आते तो बस घर वालों से ये पूछ कर कह देते, कई फतकुम कैसी है, ये कैसी है, बस हाल चाल पूछ लेते, मुझसे कोई कलाम ना करते। फिर मुझे शुभ होता कि कोई बात है जरूर। आखिर में आपसे इजाजत लेकर अपनी माँ के घर चली गई ताकि वो मेरी तीमारदारी कर सके। और ये भी चीज इनके लिए तकलीफ थी कि अल्लाह के नबी ने मुझे इजाजत दे दी। आम हालात में अल्लाह के नबी आपको ज्यादा दिन अपने माँ बाप के घर रहने की इजाजत नहीं देते थे, और ये मोहब्बत का अंदाज होता है। और बीवियों का मामला अजीब है, शौहर ना जाने दें तो भी परेशान होती हैं, और जाने दें तो कहती हैं हाल ही नहीं पूछा। हाँ, तो ये अल्लाह के नबी से जब पूछती हैं और अल्लाह के नबी ने इनको खिलाफ मामूल कहा चली जाए, तो इस पे भी इनको तकलीफ थी कि अल्लाह के नबी ने पहले तो मुझे कभी नहीं सराहने की इजाजत दी। खैर, कहती है एक रोज रात के वक्त हाजत के लिए मैं मदीना के बाहर गई। उस वक्त तक हमारे घरों में बैतुल खला नहीं थे, हम लोग जंगल में ही जाया करते थे। मेरे साथ मिस्ता बिन उसासा की माँ भी थी जो मेरे वालिद की खालाजाद बहन थी। किसकी खालाजाद बहन थी? अबू बकर सिद्दीक के। दूसरी रिवायत में आता है कि इस पूरे खानदान की किफालत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जिम्मे ले रखी थी, मगर इस एहसान के बावजूद मिस्ता भी इन लोगों में शरीक हो गए जो हजरत आयशा के खिलाफ इस बोहतान को फैला रहे थे। यानी उनकी जुबान से भी बात निकली। अब आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे सहाबा से भी बाज दफा गलतियां होती हैं क्योंकि वो इंसान थे। रास्ते में उनको ठोकर लगी और बेसाख्ता इनकी जुबान से निकला, गारत हो मिस्ता। मैंने कहा अच्छी माँ है जो बेटे को कोसती हो, और बेटा भी वो जिसने जंगे बदर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा बिटिया तुझे क्या इस बातों की खबर है कुछ? कहा क्या बातें? कहा कुछ नहीं। इस पर उन्होंने सारा किस्सा सुना दिया कि तुम्हारे बारे में तो शहर भर में ये बातें फैल रही हैं, और फिर मुनाफिकीन के साथ कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल हो गए। सबसे पहले मिस्ता अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे भी थे, गरीब भी थे, मुहाजिर भी थे, और साथ ही साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक इनकी मदद भी करते थे। अब आप अपने ऊपर लें, खानदान के किसी शख्स की आप टेक केयर करते हो और वो आपकी बेटी पे कोई बात कर दे तो हमारा क्या रवैया है? इसी सबक में देखेंगे कि अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला किया। इसी तरह हसान बिन साबित मशहूर शायर थे, इस्लाम की हिमायत में शायरी करते थे, लेकिन इन्होंने इस मौके पे हजरत आयशा के बारे में कुछ बातें कही। बाद में लोग हजरत आयशा से कहा करते थे कि हसान बिन साबित वही है ना जिन्होंने आपके खिलाफ बात शेर किए गए थे, तो कहती नहीं, हसान बिन साबित वो है जो इस्लाम की हिमायत में शेर कहते थे। मैं कहती हूँ कितना मुख्तलिफ है अपने लिए जीना और इस्लाम के लिए जीना। चूंकि आज हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो हम इसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। आज तुम्हारी जाती जिंदगी में इतनी सी मुश्किल आ जाए, हम सबसे पहले इस्लाम पे बात करते हैं। वो ऐसे नहीं थे, हजरत आयशा ने इनको भी माफ कर दिया। इसी तरह हमना बिनते जहाज, ये कौन थी? हजरत जैनब की बहन थी, हजरत आयशा की सौकन की बहन थी। तो उन्होंने सौकनापे की आड़ में आकर कुछ ना कुछ बात कह दी। खैर, ये कहती है कि मैंने जब ये कहानी सुनी, ये दास्तान सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। वो हाजत भी भूल गई जिसके लिए आई थी, सीधी घर गई और रात भर रो रो कर काटी। यानी अब आयशा को पता चला कि मेरे खिलाफ क्या रहा। इससे भी पता चलता है कि भोली भाली थी वो, और मोमिन हमेशा भोला भाला था। उसको कोई नहीं फिक्र होती कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं किसी को बुरा कहता तो कोई दूसरा कहता है। वो कहता मैं मानता ही नहीं कि कह सकता हूँ। खैर, कुछ अरसा गुजरा, आयशा कहती है कि मेरे पीछे रसूलुल्लाह ने अली और उसामा बिन ज़ैद को बुलाया और उनसे मशवरा तलब किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी मशवरे करते थे। और घरेलू जिंदगी का मसला, तो हजरत उसामा ने मेरे हक में कलमा खैर कहा कि अल्लाह के नबी आयशा ऐसी नहीं हो सकती। और उसामा कौन थे? अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे के बेटे थे, यानी मुंह बोले नवासे कह लें या बोते कह लें। खैर, और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, भलाई के सिवा आपकी बीवी में कोई चीज हमने नहीं पाई, ये सब कुछ किस पर बातिल है जो उड़ाया जा रहा है। रहे अली, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, औरतों की कमी नहीं, आप उनकी जगह दूसरी बीवी कर सकते हैं, और तहकीक करना चाहें तो खिदमतगार लौंडी को बुलाकर हालात दरियाफ्त कर लें। ये हजरत अली का एक बहुत अच्छा जवाब था कि घर के मुलाजिम जितना अच्छा किसी को जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता। तो कहा कि उनकी लौंडी को बुला के पूछते हैं कि भला आयशा में कोई ऐसी बातें थी। चुनाचे खिदमतगार को बुलाया गया और पूछगिछ की गई। उसने कहा इस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनमें कोई बुराई नहीं देखी जिस पर हरफ रखा जा सके। कि कोई उनके अंदर बुराई नहीं थी, मगर वो सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है। इतनी बोली है बस। इसी रोज रसूलुल्लाह ने खुतबे में फरमाया, मुसलमानों, कौन है जो इस शख्स के हमलों से मेरी इज्जत बचाए, जिसने मेरे घर वालों पर इल्जामात लगाकर मुझे अजियत पहुंचाने की हद कर दी है। बखुदा, मैंने तो अपनी बीवी में ना तो कभी को बुराई देखी है और ना ही उस शख्स में जिसके मुतल्लिक तोहमत लगाई गई, यानी सुफान बिन मुअत्तल। वो तो कभी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर भी नहीं आया। ये भी नोट करने का नुकता है, गैर मर्द अकेले में आप घर वालों के पास नहीं आते, काम भी हो तो बाहर से काम करके बात करके चले जाते हैं, क्या उनको भाईजान और फुलां फुलां कहकर अंदर बिठाना और जूस पिलाना, फिर कहना कि घर में तो अब कोई और है ही नहीं। इस्लाम का एक अपना मिजाज है, अगले सबक में हम इस पर थोड़ी सी बात देखेंगे इंशाल्लाह। खैर, जब हजरत अली ने ये बात कही तो हजरत उसैद बिन हुजैर, बास कहते हैं साद बिन माज ने उठकर कहा, अल्लाह के रसूल, अगर वो हमारे कबीले का आदमी है तो हम उसकी गर्दन मार देंगे, यानी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस शख्स से बचाएं तो इसको मार देते हैं। ये सुनते साद बिन उबादा और रईस खजरत जुट खड़े हुए और कहने लगे, झूठ कहते हो, तुम हरगिज उसे नहीं मार सकते, तुम इसकी गर्दन मारने का नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि वो खजरत में से है, अगर वो तुम्हारे कबीले का होता तो तुम कभी ये ना कहते कि हम इसकी गर्दन मारेंगे, यानी कबायली असबियत सामने आ गई। उसैद बिन हुजैर ने ये बात देखी तो उनको जरा थोड़ा सा ये बुरा लगा कि भाई ऐसी बात इन्होंने क्यों कर दी, और इसका यानी इस रैंक को नहीं कहना चाहिए था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि ये हालात थे मक्का के जब ये सब कुछ हो चुका था, और ऐसे वक्तों में आप देखिए कि अल्लाह के नबी का हिल्म कैसे, आम थोड़ दिला गुस्से का तेज शोहर होता तो वो बीवी को क्या क्या गालियां ना दे देता। मैं तो इस सारे वाक्य में जो खूबसूरत सा अल्लाह के नबी का मामला देखती हूँ कि इतना सब्र और तहम्मल अगर अल्लाह सारे शोहरों को दे दे तो बावजूद बीवियां अपने टेढ़ बन के बहुत सारी घरेलू खराबियों से बचे लोग, लेकिन अल्लाह के नबी ने इतने सुकून से बात की और ये सब कुछ कर करा के आखिर वो वक्त आ गया जिसका अल्लाह ताला ने वक्त लिखा हुआ था। हजरत आयशा अपने माँ बाप के घर में थी और अल्लाह के नबी ने आकर हजरत आयशा से एक मौके पे पूछा कि आयशा, अगर तुमसे कोई गुनाह हो ही गया तो अल्लाह माफी को कबूल करता है, अल्लाह से माफी मांग लो। कहती हैं कि ये बात सुन के तो मेरे आंसू थम गए। मैंने कहा कि गलत बात बाहर से सुन सुनकर इतने आपके कान आदि हो गए कि अब मैं सच कहूंगी तो आप नहीं मानेंगे और झूठ कहूंगी तो आप मान लेंगे, तो मैं तो वही कहूंगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था। कहती है, जिस बात और तकलीफ की वजह से मुझे हजरत याकूब का नाम भी याद नहीं रहा, और मैंने कहा अल्लाहुल मुस्तान वला तसिफून, वही बात कहूंगी कि अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है इस पे जो लोग खड़ते हैं। और आपने कहा कि आयशा, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला तेरी बेगुनाह ही साबित करेगा। कहते हैं कि ये बातें हुई और उसके बाद फिर वाकई अल्लाह के नबी के ऊपर वही की कैफियत थी। कहती, मुझे यकीन था कि अल्लाह अपने नबी को बता देंगे वही के जरिए कि आयशा सच्ची है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वही के असरात खत्म हुए तो अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे बादलों के छटने के बाद सूरज की रोशनी होती है खुशी से, क्योंकि देखिए अगर घर में लड़ाई हो, बीवी से शोहर झगड़े, तो शोहर कहाँ खुश सोता है, उसको भी उसका भी तो मूड ऑफ होता है, वो भी तो भूखा ही सोता है ना, वो भी तो गुस्से में सोता है ना, कि दूसरों को दुख देने वाले कभी खुश हो सकते हैं, कभी भी नहीं होते, बल्कि आप तो कहेंगे नहीं तो ना से इनकी तो आदत है, और वो जलते उठते पता नहीं रात को कितना अपना खून जला के सोते हैं। अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ थी, और जब सुलह होती है तो कहते हैं कि सुलह के बाद तो पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, और ऐसे ही लगता है कि अल्लाह के नबी इतने खुश थे, और आपने कहा कि आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बेरात नाजिल की और तेरे हक में कुरान की आयतें नाजिल कर दी। कहती, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हक में कुरान की आयतें आएंगी। कहती, ज्यादा से ज्यादा मुझे ये था कि अल्लाह ने नबी को बता देगा कि आयशा सच्ची है। जब ये बात हुई तो हजरत आयशा की माँ ने कहा कि आयशा उठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर। तो कहती, मैंने एक अदा से कहा कि मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं उसका क्यों ना करूं कि जिसने ये मेरी बेगुनाही साबित की और अल्लाह की हम की। अब देखिए ना कि हमारे लिए तो अल्लाह के नबी रसूल थे ना, नबी थे, तो बीवियों के लिए शोहर भी तो थे, तो हजरत आयशा और बाकी बीवियां भी कभी कभी आपसे बात जो करती थी वो बीवी बन के करती थी, ये अलग बात है कि अक्सर बात करती थी रसूल समझ के। तो इस वाक्य के अंदर अब आप देखेंगे कि कितनी गहरी बातें हैं जो हमें सबक के साथ सिखाई जा रही है कि जब भी कभी कहीं ऐसी कोई बात हो जाए तो ऐसे वक्तों में इंसान अपने सब्र को न जाने दे। और यहां से अल्लाह ताला ने ये बात भी बता दी कि जिसने इसमें जितना हिस्सा डाला उतना उसका मामला है, तो क्या कहा, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको बुरा ना समझो। देखिए, तकलीफ तो हुई, आप सब अपने ऊपर लेके सोचिए, जिस समय कोई तकलीफ हो आप रोज दर्द सहते हैं, रोज सहते हैं, रात को भी दर्द है, दिन को भी है, एक दिन दिल बड़ा करके आप ऑपरेशन कराने की नियत कर लेते हैं, वो ऑपरेशन के डेज कितने मुश्किल होते हैं, तकलीफ होती है ना, पैसा भी लगता है, चीर फाड़ भी होती है, घर का निजाम बिगड़ता है, उसके बाद क्या होता है, एकदम सेहत हो जाती है। जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हालात आएंगे, ये जो आज आप बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में जी रहे हैं ना, ये हमेशा नहीं रहनी जिंदगी, किसी की जिंदगी ऐसी नहीं रहनी जैसी आज है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और खास तौर पे जब जिंदगी जवानी से ढलकर थोड़ी सी आगे उम्र में जाती है, शादी होती है, शादी नहीं है तो बच्चे होते हैं, हालात बदल जाते हैं। ऐसे प्रोटेक्टेड माहौल वाले बच्चे और बच्चियां जिनको पहले से उन हालात के लिए ना तैयार किया हो, बाद दफा फिर उनके होश गुम हो जाते हैं, फिर रोते हैं बैठ के और रोती हैं बैठ के। तो हमेशा जिंदगी को एक रियलिटी समझे, ये फन टाइम नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये मूवी नहीं है, ये दुनिया जो है ये रिहर्सल नहीं हो रही हमारी, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, इसके अंदर हम हकीकत में एक हकीकत से गुजर रहे हैं, और हर वक्त हम आजमाए जा रहे हैं। लिया ब्लुअ कुमैय को मकसद वाला, ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है कौन बुरे काम करता है। तब इस वाक्य की बेस पे हम इसमें से जो बातें बाकी निकलती हैं उसको देखेंगे। अल्लाह सुबहाना ताला उस उम्मत को जहां ये मामला हुआ, जो खैरुल कुरून थे, बेहतरीन दौर थे, उसके अंदर से भी चंद लोगों से अगर ऐसी बातें हो गई तो उनको कहते कहते अब अल्लाह ताला हम सबको ये सारी बातें सिखा रहे हैं कि तुम क्या करो इसके मामले में, अपना हाल देखो। लिकुल इमरिन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी, हर शख्स के लिए उसमें इतना ही हिस्सा है जो उसने कमाया। इसको नोट कीजिए, एक आयशा पर इल्जाम लगा, उसका आगाज अब्दुल्ला बिन उबई ने किया, वो तो करेगा ही इसका भुगते का इल्जाम, क्योंकि वल्लजी तवल्ला किबरहू, और वो जिसने उठाया इसका बड़ा बोझ, या वल्लजी के नीचे लिख लीजिए अब्दुल्ला बिन उबई, यानी जिसने इस बड़े बोझ को अपने कंधों पे उठाया, मुराजे की शुरू किया, बिगिनिंग की, इस बात का रिवाज डाला, उसके लिए तो मिनहुम लहू अजाब होना अजीम, उनके उसके लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। क्या पता चला इस बात से कि अब्दुल्ला बिन उबई के लिए तो है ही असाब, जैसे काबिल ने पहला कत्ल करके दुनिया में कत्ल की रस्म डाली, तो आज दुनिया में होने वाले हर कत्ल का बवाल उस पर भी जा रहा है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई ने जो कुछ किया है वो उसको तो मिलेगा, उसका नुकसान तो होगा सो होगा, लेकिन तुम में से जिसने जितने बोल बोले, जितने नेगेटिव सेंटेंस बोले, जो कुछ किया कराया, वो सब कुछ उसको भी मिलेगा। अल्लाह सुबहाना ताला के अकाउंट्स बड़े परफेक्ट हैं, एक इशारिया के बाद, एक पॉइंट के बाद भी कोई दो लफ्ज डल जाते हैं ना जीरो से पहले, अल्लाह कयामत के दिन वो भी खोल के दिखा देगा। हम दुनिया में बच सकते हैं लेकिन हम आगे जाके नहीं बच सकेंगे, इसलिए लिखो लिमरे मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी, अमल की बात लिखिए कभी किसी के बारे में। और इस पूरे स्नैरियो को आप एक दीनदार के नाम से सोचें, क्योंकि यहाँ स्नैरियो बिल्कुल यही था कि अल्लाह के नबी के दीन को बदनाम करना चाहते थे। देखिए अब्दुल्ला बिन उबई को आयशा से क्या लगेगा, सीधी साधी बोली वाली बच्ची, उन्होंने क्या कभी कहा होगा। इससे पता चलता है कि बाजवा पर्सनल ग्रजिस नहीं होते, रिलीजियस ग्रजेस होते हैं, उसकी वजह से लोग दूसरे फरीक को बदनाम कर देते हैं, और शैतान जिस काम में हाथ डालता है। आपको ट्रिक्स ऑफ शैतान मैंने जब लिखाए थे सूरह बनी इसराइल में, तो बताया था कि शैतान जो बाकी स्टेप्स में से गुजर के जब नाकाम होता है तो दीन का काम करने वालों के खिलाफ लोगों के दिलों में बातें डालता है, और उनकी जायज और हक बातों को भी बुरा करके दिखाता है, सिर्फ ये सोच के कि एक दफा इनको बुरा कहें और फितना फैले। तो अल्लाह ताला कहते हैं हर एक का हिस्सा आप अपने ऊपर लें, कभी मेरे खानदान में या दुनिया में या सियासी लीडरों में या किसी पे भी कोई बात होती है तो मैं उसमें कितना हिस्सा डालती हूँ। एक सेंट का बटन दबाया ना आपने अगर ऐसी किसी बात को आगे करने के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लिकुल लिमरे मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी, ये भी गुनाह होगा। आंख के इशारे से मुस्कुरा के, आंख मार के, किसी की तरफ इशारा करके, ये है वो, इनकी बात हो रही है, ये वो है, अगर ऐसा भी कह दिया तो बात पकड़ी जाएगी। वल्लज़ी तवल्ला किबरा हूँ, हाँ जो बड़ा था वो तो था, इनमें से जिसने इसका बड़ा बोझ अपने सर पे लिया उसका तो मामला होगा। तो भी करना क्या चाहिए ऐसी बातों में, आप भी कुछ सोचेंगे कि भाई दुनिया में ऐसी बातें तो होती रहती हैं और हम खबरें सुनते रहते हैं, तो ऐसे मामलात में क्या करें। तो अब यहां से लिस्ट बना लीजिए आयत 12 से, लौला इस समय तुम हो, क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी, कौन सी ऐसी गंदी बात सुनी, जन्नल मोमिनून अवल मोमिनात बी अनफुसिम खैरन, तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, इसको नोट कर लें, कि मोमिनों ने अपने बारे में बुरा, अब इसके दो तीन मुख्तलिफ मानी बन सकते हैं। पहली बात ये कि इस बात को सुनकर उन्होंने हजरत आयशा के बारे में नेकुमानी क्यों नहीं की। देखिए, दुनिया में हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से पता होता है। मिसाल देती हूँ कि आपके घर का एक बच्चा बिल्कुल कभी ऊंची आवाज से बोला भी नहीं, गाली देना तो दूर की बात है, और हर वक्त उसके मिजाज में नरमी का ही अंसर गालिब है। एकदम कोई आपको कहता है बाहर, कहते इधर आओ, देखे बाहर, वो अब्दुल्ला ने बाहर गाली दी है, तो आप भला क्या कहेंगे? अब्दुल्ला ने दी है, अल्लाह के बंदो, वो तो कभी ऊंची आवाज से नहीं बोला, वो गाली कैसे देगा? आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह खानदान की किसी औरत की कोई बात आती है सामने, और कोई आप कहते हैं कि उसने तो मिसाल है कि अपने शोहर को ये बात सुना दी, आप कहते हैं उसने सुनाई, वो तो अल्लाह की गाय बन के उसके आगे बोलती भी नहीं है। हर बंदे के बारे में हमारे दिल में एक गुमान जरूर होता है। कुछ चीजें होती हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ नहीं, और बस वो मैंने कहा कि माओ को अंधा इतमाद होता है अपने बच्चों पे, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरी बच्ची ये नहीं कर सकती। अल्लाह ताला जब मोमिनों को दूसरे मोमिनों के लिए यही इतमाद सिखाते हैं कि जैसे डंके की चोट पे तुम, बेशक तुम्हारे बच्चे ने किया भी हो तो तुम कहते हैं नहीं वो नहीं कर सकता, नहीं वो मेरी बेटी तो ये कर ही नहीं सकती, मैं उसकी माँ हूं, मैंने उसको पेट में रखा, मैंने उसको दूध पिलाया, तो अल्लाह कहते हैं कि एक आयशा ये ऐसी थी जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्ट किया। पहली मानी है। दूसरा, या बी अनफुसिहिम खैरन का मानी है कि खुद को आयशा की जगह पे रख लो। क्या आयशा इतनी थोड़ी हुई थी? चंद घंटे के लिए वो काफले से जुदा हुई और उन्होंने इतना गंदा काम कर लिया कि उनको अपने शौहर की मोहब्बत नहीं मिली हुई थी। और दूसरी बात, अब यहां से देखिए, मोमिनों की सोसाइटी और फाजरों की सोसाइटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या ईमान वाले, साफ सोच वाले लोग हर वक्त ऐसी ही गंदी बातें सोचते हैं? क्या जहां किसी गैर मर्द को औरत के पास मिलने का मौका, बात करने का या बात कहीं अकेले का मौका मिला, क्या वो ये गंदी बातें सोचेंगे? क्या मोमिनों की सोच इतनी गंदी, उनकी निगाहें इतनी गंदी है? हरगिज नहीं। और क्या बंदा हर वक्त हर तरह के हालात में इन चीजों के लिए तैयार होता? ये चीजें बगैर किसी प्रेपरेशन के इंसान कबूल करता है? सोचो कि तुम कह क्या रहे हो। वहां कोई क्लब नहीं था, वहां कोई फर्स्ट क्या कहते हैं कि न्यू ईयर की नाइट नहीं थी, वहां कोई गंदे काम नहीं हो रहे थे कि एकदम जज्बात की रो में बह गए। और आप सारे वो लवाजमत भी देखे, सफर, गर्मी, थकन, पसीना, भूख, परेशानी, घबराहट, कोई तो ऐसा मोटिव ही नहीं है कि जो ऐसे गुनाहों को प्रमोट करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रमोट करती हैं, लिबास प्रमोट करते हैं, खुशबुएं होती हैं, माहौल होता है। वो बेचारे तो सफर में थे और आ कहाँ से रहे थे, ये भी सोचो। जंग से आ रहे थे, कोई फन करके नहीं आ रहे थे, तो लिहाजा तुमने ऐसी बात सोची भी क्यों? वकालु हाज़ा को मुबीन, और तुम्हें ये कहना चाहिए था कि कह देते कि ये तो खुल्ला एक इफ्क है, तूफान है, तो आप भी अपने पल्ले से ये बात बांध लें। किसी दीनदार के बारे में कोई बात पता चले, वहीं सफा फाड़ के आगे चले, मुझे क्या था और तुम्हें क्या, मेरा क्या मामला। इसलिए कि जब एक से दूसरा आगे सुनता है ना, तो बात बिगड़ जाती है। चलो ठीक है, अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात कह दी, उसको क्या करना चाहिए था? आय 13, लौला जाओ अलैहि बिअरबाति शुहदा, शुहदा क्यों नहीं वो लेकर आए इस पर 4 गवाह। पिछली आयतों में हमने क्या पढ़ा? किसी पर कजफ का इल्जाम लगाया तो 80 कोड़े, इल्जाम से बचने के लिए 4 गवाह दिखा दो। भाई तुमने अगर देख लिया उनको आते हुए, तो इस काम के 4 गवाह पेश कर दो, जैसा कि पीछे बात हो चुकी और सूरत निसा की आयत नंबर 15 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जिना की सजा के लिए 4 गवाहों की शर्त लाजमी है। और सूरह निसा जो थी वो 4 हिजरी में नाजिल हो चुकी थी, तो गोया के लोगों को ये बात साफ पता थी उस वक्त भी कि किसी पर अगर इल्जाम लगाएं तो या तो 4 गवाह पेश करें या खामोश रहें। और फैज लम या तो बिशहदाई, तो जब वो लोग गवाह नहीं ला सके तो फौलाई का इंदोल्ला हुमुल काज़िबून, तो वही लोग अल्लाह के नजदीक झूठे हैं, यानी उनके झूठा होने में यही बात काफी है कि उनके पास 4 गवाह नहीं है। कितना प्रोटेक्टेड है इस्लाम का कानून कि ऐसे नहीं कि राह जाते किसी को इस तरह के बातों में पकड़ लो, और साथ ही फरमा दिया वलौ लफ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर से मुराद कौन है? वो तीन चार मुखलिस सहाबा जो बातों में आकर आयशा के खिलाफ बात कर गए, वह रहमत हुआ और उसकी रहमत फिर दुनिया वाल आखिरत, दुनिया और आखिरत में लमस्सकुम फीमा अफ़ज़ तुम फी ही अज़ाबुन अज़ीम, फीमा अफ़ज़ तुम फी ही अज़ाबुन अज़ीम, तो फिर तुम पर जरूर लगता दुनिया में भी इस मामले में सख्त अज़ाब जिसको तुमने शुरू किया। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा खास फजल और मेरी रहमत है कि ये बातें नबी के घराने पे बात कर ना छोटी बात नहीं है। ये मत देखो कि इल्जाम छोटा के बड़ा, ये देखो किस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, किस हस्ती के बारे में तुम कुफर बोल रहे हो। तो अगर ऐसे शख्स के बारे में तुम कोई बात करते हो तो अल्लाह ताला तो तुम्हें उसकी पकड़ में आखिरत का इंतजार नहीं करेगा बल्कि दुनिया में पकड़ लेता। लेकिन उसने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ये अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत है। तो क्या पता चला कि ऐसी बातों में अगर बंदे की पकड़ अगर नहीं हो रही तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के ऊपर रहमत है। तरबियत के पहलुओं को नुमाया किया जा रहा है कि देखो तुम सब अहले ईमान एक जान की तरह हो। हजरत आयशा पर इल्जाम लगाकर अपने ख्याल से अपने कियास से तुम उसकी तर्दीद क्यों नहीं करते? तुमने क्यों नहीं आयशा की साइड ली? तुमने क्यों उनके खिलाफ बात कर दी? और फिर गवाह पेश करो। और आपको पता कि ऐसे लोग जिन्होंने इस बारे में बात की थी तो हजरत हसन, मस्तो मिस्तो और हमना, इन तीनों पे हद कजफ लगी थी फिर बाद में, और अब्दुल्ला बिन उबई को छोड़ दिया। क्यों? फलाउ मजाब नजीम, उसकी आखिरत में पकड़ होगी। इन तीनों के ऊपर तोहमत इस पे लगी थी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, तिरमिजी में भी है, अबू दाऊद और इब्ने माजा में भी है, और अब्दुल्ला बिन उबई को छोड़ दिया। मोमिनों को अल्लाह दुनिया में पाक कर देता है। और दूसरी बात यह था कि अब्दुल्ला बिन उबई के पीछे एक पूरा जत्था था। अगर अब्दुल्ला बिन उबई को कुछ कहा जाता तो हो सकता है कि उस वक्त मुसलमानों के लिए ऐसी दुश्मनी उठ जाती कि उस वक्त फिर इंसान उस पर काबू ना पा सके। फिर एक और बात इसमें क्या पता चलती है, अफवाहसाज़ी, नशर इशाअत, ऐसी चीजों को आगे करते जाना, ये चीज बिल्कुल भी बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए अगली आयतों में देखिएगा कैसे अफवाहें फैलती हैं। आयत नंबर 15, इस तलक़ौ नहु बी अलसिनातिकुम, जब तुम ले रहे थे इसे अपनी जुबानों से, यानी इधर से बात सुनी उधर पहुंचाई, इधर की उधर उधर की उधर, इंसानी कमजोरी है। आप देखिए कि इंसान के अंदर एक जज्बा है दूसरे को हैरान करना, सरप्राइज देना, परेशान करना। अब जब ये बात होती है ना तो लोग ऐसी बात सुनते ही फटाफट क्या करते हैं, इस तलक़ौ नहु बी अलसिनातिहिम, सीनाती को बेल सीनाती को, टेलीफोन सेलफोन सुना कुछ तुमने। आप अपने ऊपर लेके सोचें, कोई ऐसी बात किसी मशहूर शख्स की दुनिया में बाहर आती है, अमूमन उसके बाद क्या होता है, टेलीफोन बिजी एंगेज, और हर बंदे का दिल होता है कि यह अहम खबर मैं दूसरे को दूं। भला क्यों दूं? ताकि मैं उसकी वो हर है, अच्छा ऐसा हुआ, क्या कह रही हैं आप, मैं तो नहीं मानती। इस तरह की बातें देकर वो हैरत में लोगों को गुम करना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वतकुलूना बिअफवाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म, तुम अपने मुंहों से वो कुछ कह रहे थे जिसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं था, सब बातें बेइल्मी की थी, वतहसबूनहू हैयिनन, और तुम इसको बहुत मामूली समझते थे। क्या हुआ, एक आयशा पे इल्जाम लगा रहे, हालांकि वहू इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक आम मुसलमान औरत पर भी तोहमत लगाना बहुत बड़ी बात है, कहाँ फिर वो अल्लाह के नबी की बीवी, और वो बीवी जिससे अल्लाह के नबी को मोहब्बत बहुत थी। तुमने आयशा पे नहीं तोहमत लगाई, तुमने अल्लाह के नबी को तकलीफ दी, और अल्लाह के नबी को तकलीफ देने वाला अल्लाह को तकलीफ देता है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए था, वलौला इस समय तुमहू, क्यों ना हुआ कि जब तुमने इसको सुना, कुल तुम मा यकूनु हाजा, तुम फौरन कह देते हमारे लिए तो ये लायक ही नहीं, या हमें तो ये जायज ही नहीं कि अन्नतकल्लम बिहाजा, कि हम ऐसी बात जुबान पर लाए। ये है 100 बातों की एक बात, नजा मन समत, दो तीन लफ्जों की हदीस है, निजात पा गया वो जो चुप रहा, एक चुप 100 सुख। इसीलिए आप देखें जो लोग कम बोलते हैं ना वो बहुत बातों से बच जाते हैं, فتنوں سے بھی بچ جاتے ہیں، الزام تراشوں سے بھی بچتے ہیں، اور اپنے نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچتے ہیں. میں نے بولنا ہی نہیں، بلا لو جو مرضی کر لو. اللہ تعالیٰ کہتے سبحان کا حاضر بہتان عظیم، پاک ہے اللہ تو، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اتنا بڑا الزام لگا دیا، یعنی ہم اس میں نہیں بولیں گے. اور ساتھ ہی دیکھیے اس میں شدت، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس میں اور تو شدت ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آپ دوبارہ نہ ایسا کام کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. کتنی تکرار ہے، دیکھو اب ہو گیا، آئندہ نہ کرنا. ویبین اللہ لکم الایات، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہاں تک یہ بات پوری ہوئی، آگے اس کے سیکوینسز ہیں. اس ساری باتوں کو جمع کر لیں، کتنا خوبصورت ادب ہے کہ جب اس کو بولے نا، کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بات آئے، سوچے میں یہ بات کیوں بتاؤں، اگر سچ ہے تو کوئی اور بات کر لے گا. یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو میں ضرور پیش کروں. ایک اور چیز اپنے لیے ہم سب عمل کے نقطے نوٹ کر رہے ہیں نا، میں اس بات کو آگے کروں گی. اگر یہ بات سچ ہوئی تو خوشی ہوگی دوسروں کو. آپ فون کرتے ہیں، ہیلو سنو تم نے دیکھا وہ فلاں کی بیٹی کا یہ چکر ہے، سچ بتائیے یہ بات سن کر کیا کسی کو خوشی ہوگی؟ تو میں کیوں بتاؤں؟ اور اگر یہ بات غلط ہوگی تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا. یہ صورت ایسے لگتا ہے میں اندر باہر سے نکھار رہی ہے کہ دیکھو تم لوگوں کی باتوں میں بے تکا نہ بولا کرو، پتہ بھی نہیں. اور بعض باتیں ہم کرتے ہی اپنے گمان کے ساتھ ہیں، I think so. یہی ہمارے جملے ہوتے ہیں. جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو جائے کبھی نہ بولے. یقین کریں، اگر آپ کبھی احادیث پڑھے نا زبان کے بارے میں، زبان کی حفاظت اور اس کے جو نقصانات ہیں غلط چیزوں کے، بلیو بھی دل ہی نہیں کرتا بولنے کو. میں کیوں بولوں؟ یہ کون سی اچھی بات ہے؟ اچھی بھی ہوگی تو کوئی دوسرا سنا دے گا. اس کو سرسرا کہتے ہیں عربی میں، باتونی بننا، باتونی، ہر وقت ٹاکیٹو، ٹک 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 ٹک، ٹک 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 لگی ہے. اور جتنے آپ بیکار ہوں گے اتنی بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہیں بھی چلے جائیں آپ، ہم کہیں انوائٹڈ تھے تو میں نے، ہم تو وقت پہ چلے گئے تھے یہ سوچ کر کے سب کچھ وقت پہ ہوگا، لیکن ہم پہلے ہی تھے وہاں. پھر اس کے بعد جب پورا ٹوٹل ٹائم گزرا نا، تو میں نے دیکھا شادی اچھی تھی، یعنی اسلامک طریقے سے تھی، کوئی وہاں ایسی بات نہیں تھی. لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی، ٹائم، میں نے گھڑی دیکھی نا، تو میں نے کہا یہ تو پورا اتنا ٹائم ہم نے یہاں گزارا ہے جتنا ہماری کلاس کا ٹائم ہے. 4 گھنٹے لوگوں کو کتنے مشکل لگتے ہیں، ہائے 4 گھنٹے ہیں، تو وہ 2 بھی نہیں آتے، ایک بھی کوئی نہیں آتا. جس کو نہیں آنا وہ 4 کا سن کے 1 گھنٹہ بھی نہیں آتا. لیکن شادیوں میں اور مجال ہے کہ کسی کے منہ پہ کوئی خیال ہو کہ دیر ہو رہی ہے، اور وہ بھی رات کا وقت، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، باتیں اور ٹھٹھے اور ہنسی اور مزہ، اور ہر بندہ فیس ٹائم پہ اپنی تصویریں بنا رہا ہے. میں کہہ سکتی ہوں بہت دیر بعد شادی میں نے دیکھی ہے، اچھی اچھا ماحول تھا شادی کا. لیکن ہم عورتیں تو وہی ہیں نا، چاہے انہوں نے پردے کا انتظام کیا، بلیو می کہ میں نے شاید 20 لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ میں فون، اور ایسے کرتے مجھے سمجھ نہیں ہے، میں کہیں میسج پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک بندہ جو میرے سامنے ہی تھی دیکھا تو اس میں تصویر تھی، تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ اپنی تصویر دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، یا کھینچتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. کیا شان ہے، اپنے کون دیکھتا ہے آپ کو؟ وہ تو اپنوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں ٹھیک لگ رہی ہوں کہ نہیں. تو ان کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی ایسی حرکتیں کروں تو میں کتنی سی چوری لگوں، لیکن ان کو نہیں پتا کیونکہ وہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ انسان اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے. یہ لوگ کیوں رات دیر تک جاگ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے صبح دیر تک سونا ہے. تو جس نے صبح فجر اٹھ کے پڑھنی اور اس کے بعد اپنے معمولات شروع کر دینے، پھر وہ تو اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں. پھر اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اس طرح کا انداز کہیں پیچھے پڑا تھا؟ ایک آیت ہے پیچھے جو اسی سے شروع ہوئی تھی، سورہ نحل کی، چلے زیادہ دن بھی نہیں گزرے، ان اللہ یامرکم، یاد ہے بلاتلی، جی وہی آیت تھی. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر انسان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ مجھے کسی چیز کی نصیحت کرتا ہے تو وہ میرے حق میں کتنی زیادہ کام کی ہوگی. اب اس کے بعد वाक्य वही है, लेकिन अब उसके बाद क्या कुछ और मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं काफिरों के तरफ से, और उनकी सारी चीजें उसको हम देखेंगे। यहाँ ब्रेक ले लें, हम रेडी है ब्रेक? जी 20 हो गए, 28 हो गए। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ब्रेक लेते हैं, और अगर चाहें तो पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद ब्रेक। इंशाल्लाह 20 मिनट में वापस आते हैं। कोई बात आपके जहन में, कोई सवाल है तो पूछ के। जी आप क्यों नहीं कर सकते मना? आप उनके मसलन कोई बात बताएं तो फिर मैं आपको मना करके बताती हूँ। देखिए, अगर तो आपको ये लगता है ना कि किसी के खिलाफ बात हो रही है, तो फौरन के अच्छा मैं भी पूछती हूँ, अच्छा मैं उनसे पूछूंगी, आप कोई ऐसा जुमला बोल दें जिससे वो कॉन्शियस हो जाए कि अब इसके सामने कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये तो दूसरों को बता देगी, तो मुझे लगता है कि फौरन आपकी इस बात से लोग खो जाएंगे। और दूसरी बात है कि नसीहत का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जी जी यही तो बात अल्लाह ने समझाई है ना, कि जब किसी को की गलत बात में शुरू करो तो देखो ये कर सकता है। जी तो शैतान उसमें आ जाता है ना, वो फिर भुला देता है, वो कहता नहीं पहले अच्छी थी अब खराब हो गई होंगी, कुरान जो पढ़ने लग गई है। और यकीन करें इन सब बातों का इलाज है कि लोगों को बिजी कर दें, सिर्फ यकीन उनको बिजी करें और इस बात का एहसास हो कि उनकी जुबान से बोला हुआ एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है। जी आप नहीं, उसका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि फितना खड़ा ना हो, हक बात से कभी फितना नहीं होता। और उसको जिस तरह भी एक्शन ले आप ले, और अगर उस मौके पे नहीं कर सके तो उसका कोई बाद में ऐसा जरूर एक्शन ले, लिख के दें, बात करें कि आइंदा कभी वो बात ना हो। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि बुराई जो वो खत्म हो जाए। चलिए पहले ब्रेक के शायद, ठीक है अजान लगाएं ताकि उतनी देर में लोग जमा हो जाए।